यार्वं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जो लो द्वाद सांगमयी जिनवाणी माता की जय।
जय
सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञान रूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मथा। जलो सरस्वती स्वरूपा गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, अयोध्या की धरती से आप भाग ले रहे हैं ऋषभ देव चरितम व्याख्यान माला में, क्योंकि भगवान ऋषभ देव के निर्वाण महोत्सव का समय नज़दीक आ रहा है। माघ कृष्णा चतुर्दशी 17 जनवरी 2025। भगवान महावीर के तो कल्याणकों को, जन्म जयंती को, दीपावली पर्व को सभी लोग मनाते ही थे, लेकिन पूज्य गणी ज्ञानमती माता की प्रेरणा से पिछले 20-25 सालों से लोग हर समाज के अंदर भगवान ऋषभ देव की जन्म जयंती और उनके निर्वाण महोत्सव का कार्यक्रम भी आयोजित होता है। ये एक प्रसन्नता की और गौरव की, पुण्य की बात है, क्योंकि इस युग में तो भगवान ऋषभ देव ने ही जन्म लेकर, अयोध्या में जन्म लेकर कैलाश पर्वत से मोक्ष को प्राप्त करके और जैन धर्म की अनादि निधनता का, सार्वभौमिकता का परिचय कराया, सारी विद्याओं का, कलाओं का, नारी शिक्षा का सूत्रपात अयोध्या नगरी से ही भगवान ऋषभ देव ने ही किया था। अब उनका जब निर्वाण महोत्सव आने लगा, पौष शुक्ला पूर्णिमा को भगवान ऋषभ देव ने कैलाश पर्वत पर अपने मन वचन काय इन तीनों योगों को निरोध किया, अर्थात एकदम शांत बैठ गए, दिव्य ध्वनि बंद कर दिया, समवसरण समापन हो गया, विघटित हो गया। तब सब लोगों ने जान लिया कि अब भगवान की आयु का अंत आ गया है और इंद्रों ने, देवताओं ने, स्वयं भरत चक्रवर्ती ने अखंड पूजा कैलाश पर्वत पर प्रारंभ कर दी थी। युग का वह आदिकाल था, उसी का स्मरण करके 14 दिवसीय योग निरोध का कार्यक्रम पूज्य माता जी प्रतिदिन कराती हैं। यहाँ भी कैलाश पर्वत की प्रतिकृति के आगे भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा विराजमान है, योग निरोध की पूजा होती है और भगवान ऋषभ देव विधान का भी प्रतिदिन कार्यक्रम संघस्थ ब्रह्मचारिणी बहने आयोजित करती हैं। उसी में पूज्य ज्ञानमती माता जी के द्वारा ही रचित श्री ऋषभ देव चरितम बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आदि पुराण ग्रंथ का आधार है और तमाम ग्रंथों से इसमें प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग सारा सब कुछ भर दिया है प्रसंग प्रसंग के अनुसार। तो इसमें भगवान ऋषभ देव के 10 अवतारों को आप सुन रहे हैं। राजा महाबल की पर्याय से उन्होंने अपने मंत्रीवर स्वयं बुद्ध के संबोधन से सम्यक दर्शन को प्राप्त करके और ललितांग देव के रूप में दूसरे अवतार में आते हैं वो, और ललितांग देव की अवस्था में भी वहाँ सम्यक दर्शन से आ करके मध्यलोक में यहाँ पर राजा वज्रजंग हो जाते हैं और उनका रानी श्रीमती के साथ विवाह हो जाता है। यहाँ पर धुएं के कारण कमरे में दम घुटने से मर गए तो भोग भूमि के आर्य और आर्या हो गए। अब देखो ये 4 भव हुए, महाबल राजा, ललितांग देव, वज्रजंग राजा पुनः, और उसके बाद भोग भूमि के आर्य। वहाँ पर भी उनका स्वयं बुद्ध मंत्री जो मुनि अवस्था में थे, उन्होंने आकर के इन आर्य को और श्रीमती के जीव जो आर्या के रूप में हुए वहीं पर उन दोनों को सम्यक दर्शन ग्रहण कराया और यहाँ से आयु को पूर्ण करके वे पुनः देव गति को प्राप्त कर लेते हैं। यानी ईशान स्वर्ग के अंदर वहां पर वो देव बने और उस देवता की पर्याय में श्रीधर देव बनते हैं। होता ये है कि जो स्वयं बुद्ध मंत्री का जीव प्रीतिंकर मुनिराज के रूप में था, भोग भूमि में आर्य और आर्या को जिन्होंने सम्यक दर्शन धारण कराया था, अब उनके ही उपकारों की बात आगे श्रवण कीजिएगा। जो पांचवें भव श्रीधर देव की बात को सुनना है आपको। अंतर लक्ष्मी धरो अनंत गुणी बाह्य विभूतिमान समवादी सतेर भरता श्रीधराय नमोस्तुते। अर्थात अंतरंग लक्ष्मी रूप अनंत चतुष्टय से समन्वित अनंत गुणों के धारी तथा श्रीमाने बाह्य लक्ष्मी के रूप में समोसरण के जो स्वामी हैं, ऐसे श्रीधर यानी एक बार श्रीधर को भगवान की पर्याय में घटित करते हैं और एक बार श्रीधर देव के रूप में। तो जो श्री माने अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी को प्राप्त करने वाले हैं, ऐसे भगवान ऋषभदेव को मेरा नमस्कार हो। और उनके पूर्व के पांचवें भाव में जिन्होंने श्रीधर की पर्याय पाई, श्रीधर देवता की पर्याय, उनको भी यहाँ पर स्मरण किया। तो श्रीधर पर के रूप में यद्यपि भगवान ऋषभदेव को नमन किया है, फिर भी उनके पंचम भाव में से संबंधित श्रीधर देवता का नाम भी यहाँ पर द्योतित हो जाता है, प्रकट हो जाता है। तो आपको जानना है कि पांचवें भाव में ऋषभदेव से पूर्व के पांचवें भाव में वे ईशान स्वर्ग में श्रीधर देवता बनते हैं। कैसे बनते हैं? तो एक श्रीपुरम नाम का पर्वत था, वहाँ ध्यान करते हुए प्रीतिंकर मुनिराज जो महाबल राजा के स्वयं बुद्ध मंत्री थे और वे सम्यक दृष्टि थे मुनि बन करके, अब यहाँ प्रीतिंकर मुनिराज को श्रीपुरम नाम के पर्वत पर केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। केवल ज्ञान कैसे प्रकट होता है? घातिया कर्मों का नाश कर दिया, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी मोहनी अंतराय इन चारों कर्मों का नाश कर ध्यान में लीन हुए, सारे वैभव से शरीर से भी मोह को छोड़ करके आत्मा में तन्मय हो गए, ध्यान में लीन हो गए, तो उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई कर्मों के नाश से। तब वहां गंध कुटी की रचना हो गई। तो ईशान स्वर्ग के अंदर जो श्रीधर देवता बने थे भोग भूमि के आर्य, वहां पर अवधि ज्ञान से जान लेते हैं कि भले ही मेरे मंत्री थे ये, लेकिन अब तो मेरे गुरु प्रीतिंकर हुए प्रीतिंकर मुनिराज, और उनको केवल ज्ञान हो गया है। वहां आकर के धर्म का श्रवण करते हैं, फिर क्या करते हैं कि भगवान से वो पूछते हैं, केवल ज्ञानी भगवान से पूछते हैं कि महाराज ये बताइए कि राजा महाबल के पर्याय में जब आप मेरे मंत्री थे, सम्यक दर्शन को ग्रहण कराया था मुझे, तो उस समय मेरे तीन मंत्री और थे, वे तीनों मंत्री मर करके कहाँ गए? एक तो आप हैं जो आज मुनि से केवल ज्ञानी भगवान बन गए हैं। तब भी केवल ज्ञानी भगवान बताते हैं कि हे भव्य, उन तीनों में से दो मंत्री जो महामति और संभिन्नमति थे, वे तो निगोद में पहुंच गए। जरा ध्यान से सुनना, निगोद कहाँ है? तीन लोक में सातवें नरक की भी नीचे निगोद है, उस निगोद के अंदर पहुंच गए, जहां पर खौलते हुए जल में होने वाली खलबलाहट के समान अनेकों बार जन्म मरण धारण करना पड़ता है, जिसके लिए कहा एक श्वास में आठ दस बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख बार, जहां एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करना पड़ता है, यानी केवल जन्म मरण करना ही जिनकी नियति है, ऐसी निगोद की अवस्था में वो पहुंच गए, क्योंकि वे जैन धर्म से द्वेष करते थे, मिथ्या दृष्टि थे, इसके प्रभाव से दो मंत्री तो निगोद में चले गए, वहां तो कोई उनको संबोधन नहीं दे सकता। निगोद में क्या है? एक इंद्री है, कोई उनको कान नहीं कुछ नहीं, तो उनको कोई संबोधन नहीं दे सकता। अच्छा, तो तीसरे मंत्री कहाँ गए? तो कहते हैं कि तीसरे मंत्री जो सतमती नाम के मंत्री थे, वे भी जैन धर्म के विद्वेषी होने के कारण वो भी जा करके दूसरे नरक में दुख भोग रहे हैं। अब श्रीधर देव बड़ा परेशान होता है। देखो कर्म की गति कैसी विचित्र है कि चार मंत्रियों में से एक को तो केवल ज्ञान हो गया मुनि बन करके, दो निगोद में चले गए और एक तीसरा नरक में है। बड़ी बड़ी चिंता हो गई। लेकिन केवल ज्ञानी भगवान कहते हैं, देखो कोई भी जीव किसी के कर्म का कर्ता नहीं हो सकता। जो अपना कर्म स्वयं करता है वो उसकी फल का भोगता स्वयं होता है। इसलिए हे देव, आप चिंता ना करें, आप उनकी करनी पर डाल दें। लेकिन उस देवता का मन नहीं मानता है कि ये मेरी मंत्री थे, चलो मैं निगोद में तो नहीं जाके संबोधन कर सकता। वह देवता जा करके दूसरे नरक में उस सतमती मंत्री को जा करके खूब संबोधन करता है और कहता है कि अरे मूढ़, आप देख तो राजा महाबल को जानता है, मैं राजा महाबल का जीव हूँ, मैं श्रीधर देव हुआ हूँ, मैं तुझे संबोधित करने आया हूँ। अब तू संसार समुद्र से पार करने वाले सम्यक दर्शन को ग्रहण कर ले। अब उसके कहने पर, खूब समझाने पर, नरकों के दुख को भोगते हुए उस सतमती मंत्री के जीव ने सम्यक दर्शन को ग्रहण कर लिया। अर्थात उसने सोच लिया, क्या मुझे किसी प्रकार के मिथ्यात्व का पोषण नहीं करना है, अब मैं जिनेंद्र देव का सदा भक्त रहूंगा। और उसने सम्यक दर्शन ग्रहण कर लिया, फिर नरक की आयु को पूर्ण करके और पुष्कर द्वीप के पूर्व विदेह में महीधर चक्रवर्ती का पुत्र जयसेन हो गया। देखो कर्मों की महिमा। मिथ्यात्व के कारण कोई निगोद में गया, कोई नरक में गया। सम्यक दर्शन ग्रहण करते ही वह आ करके और चक्रवर्ती का पुत्र हो गया। विदेह क्षेत्र में जयसेन नाम का पुत्र हो गया। अब जब यवन अवस्था में उसका विवाह होने जा रहा था, तब फिर से वह श्रीधर का जीव आ करके उसको संबोधन प्रदान करता। अरे इन कथाओं को पढ़ करके ऐसा रोमांच हो जाता है, कहाँ का जीव कहाँ पहुँच जाता है, कहाँ से उतर करके नीचे जा करके गड्ढे में गिर जाता है निगोद जैसी पर्याय में। तो उस समय भी आकर के उस देव ने उन्हें संबोधन किया। ये तीर्थंकर बनने वाले हैं ना श्रीधर देव, आगे ऋषभ देव भगवान बनने वाले हैं। तब इनके मन में तो है कि मैं सब जीवों को संसार से निकाल करके कैसे पार कर दूं। ऐसी भावना से उन्होंने पुनः उस जयसेन चक्रवर्ती पुत्र को पुनः संबोधन दिया। अरे देख, तू नरक से आया है, अपनी मनुष्य पर्याय को सफल कर ले। और वहीं फिर उसे बोध आता है और वो जयसेन जाकर एक यमधर मुनिराज के पास में जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर लेता है। समाधि पूर्वक मनुष्य भाव में दीक्षा लेकर प्राण निकलते हैं, नश्वर शरीर को परित्याग करता है। तो वो जा करके और पांचवें स्वर्ग में इंद्र हो जाता है। इंद्र पद को माने अपने स्वामी से भी आगे निकल गया। इधर वो राजा महाबल का जीव तो दूसरे स्वर्ग में ही है और ये पांचवें स्वर्ग में पहुंच गया, क्योंकि दीक्षा लेकर के तपस्या करके और ऐसी पर्याय को, सुंदर पर्याय को प्राप्त कर लिया। वहाँ अवधि ज्ञान से याद आ गया, अरे मेरा परम उपकारी तो है महाबल राजा का जीव है। और वो पांचवें स्वर्ग से दूसरे स्वर्ग में पहुंचते हैं और वहां पर जा करके उनको श्रीधर देव को नमस्कार करते हैं, खूब उसकी पूजा करते हैं कि आप ही तो मेरे उपकारी हैं, आपने मेरे ऊपर उपकार करके और मुझे पांचवें स्वर्ग का देवता इंद्र बना दिया है। तो देखो भव्यात्माओं, आचार्य जिनसेन स्वामी संबोधन करते हुए कहते हैं, हे भव्यात्मन, कर्मों की गति बड़ी विचित्र है। इन कर्मों से डरना है, पुण्य कर्म करना है, पाप नहीं करना है, धर्म से विद्वेष नहीं करना है, मुनियों से द्वेष नहीं करना है और अपनी गति को सुधारने के लिए किसी से भी द्वेष करना अच्छी बात नहीं होती है। और इधर वह देव इन इन सब के भव भवांतर आगे के लिए जुड़े हुए हैं। बैर के भी भव भवांतर जुड़ते हैं, जैसे आप कमठ का और पारसनाथ का सुनते हैं, ऐसे प्रेम के भी और धर्म के प्रति अनुराग की भी भावनाएं जो एक दूसरे के प्रति रहती हैं वह भी जुड़ जाती हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं, कई बार तो मोक्ष जाने तक जुड़ जाती हैं। भगवान ऋषभ देव के 101 पुत्रों का मंदिर आपने देखा, ये भी पूर्व जन्म से भगवान ऋषभ देव के साथ जुड़े हुए थे और ऋषभ देव की पर्याय में आकर उनके पुत्र बन गए और उसी भाव से मोक्ष प्राप्त कर लिया। तो ये कथानक हमें बताते हैं कि अगर किसी से मैत्री करो तो एक दूसरे के लिए कभी भड़काओ मत। अगर असली मैत्री है धर्म के मार्ग में, मोक्ष के मार्ग में प्रवृत्ति कराओ और भव भव में यही कामना करो कि हम तुम्हें धर्म में लगाएंगे, जब हम कहीं पर भी जाएंगे तो हम आपको धर्म का संबोधन कराएंगे। तो ये मैंने आपको भगवान ऋषभ देव की 5वें भव पूर्व श्रीधर राजा का कथानक सुनाया और वे अपने देव की पर्याय को पूर्ण करके वहाँ के सुखों को भोग करके आगे जा करके पुनः मध्य लोक में आते हैं और जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र के अंदर महावत्सा देश की नगरी सुसीमा नगरी के राजा सुदृष्टि रानी राजा की रानी के राजा थे सुदृष्टि, उनकी रानी सुंदर नंदा के घर में आकर के और पुत्र रत्न के रूप में जन्म ले लेते हैं। इस भव को आप कल सुनेंगे। ये ऋषभदेव चरितम ग्रंथ इतना महत्वपूर्ण है, केवल कथानक ही नहीं है। अब आप देखिए कि इस कथानक को कहते हुए ज्ञानमती माता जी इतनी सुंदर सुंदर बातें इसमें कहीं तिलोय पर्णति भरती हैं कि नरक कैसे होते हैं, किस नरक में कितने बिल है, कैसे वहाँ जन्म लेते हैं। जैसे क्या है, मनुष्य जो है माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहता है तब उसका जन्म होता है। देवताओं में उपपाद सैया लगी होती है, वहाँ जब उठते हैं अंतर्मुहूर्त के अंदर उनका नव यौवन का 16 साल के युवक का शरीर मिल जाता है और वे वहाँ के सुखों का उपभोग करते हैं। अब नरक में जीव कैसे जन्म लेता है, तेषां छिन्नानि गात्राणि संधानं यान्ति तत्क्षणं दण्डार्तानि वारिणि यद्वद् विक्षिप्य शल्कशः। वहाँ कहते हैं, पहले भी बताया कि उन नरक की पृथ्वियों में जीव मधुमक्खियों के छत्ते के समान लटकते हुए घृणित स्थानों में नीचे की ओर मुख करके औंधे मुख पैदा होते हैं। यहाँ जाना देखना घंटे की तरह से या नीचे लटकाया गया और उसमें नीचे मुख करके एकदम लटक करके और नरक भूमि में जाते हैं। जैसे उसमें से लटक रहे होते हैं बस 48 मिनट के अंदर अंतर्मुहूर्त के अंदर दुर्गंधित घृणित आकृति वाली शरीर की पूर्ण रचना उनकी बन जाती है और बस एकदम वृक्ष के पत्ते से जैसे शाखाएं कोई टूटती हैं पत्ते गिरते हैं उस प्रकार से गिरने के समान वे नारकी जीव अपने शरीर की रचना पूर्ण होते ही उत्पत्ति स्थान से जलती हुई अत्यंत दुस्सह नरक की भूमि में गिर पड़ते हैं। अब जब गिरते हैं तो क्या होता है, कहाँ भूमि पर सत दुखीशो बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। 1000 बिच्छू डस लें जितना कष्ट नहीं होता उससे कहीं अधिक कष्ट उन नारकियों को नरक भूमि का स्पर्श करते ही होता है। वहाँ की भूमि में खूब तीक्ष्ण धार वाले हथियार गड़े रहते हैं और नारकी उन हथियारों की नोक पर गिरते हैं, जा करके उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, रोते हैं चिल्लाते हैं, उनके शरीर की संधियाँ सब छिन्न भिन्न हो जाती हैं और वहाँ पर इतनी गर्मी इतनी सर्दी है कि एकदम उछल पड़ते हैं। लेकिन वहाँ कैसे, अभी मैंने श्लोक पढ़ा कि जिस प्रकार किसी डंडे से ताड़ित हुआ जल बूंद बूंद करके बिखर जाता, किसी समुद्र में किसी जल में आप जोर से डंडा मारें तो क्या होगा, एक एक बूंद बिखरेगी फिर उसे मिल जाएगी और फिर क्षण भर में वह मिल करके जल एक हो जाता है। उसी प्रकार से उन नारकियों का शरीर भी हथियारों के प्रहार से छिन्न भिन्न होकर जहाँ तहाँ बिखर जाता है, फिर क्षण भर में फिर एक हो जाते हैं। कहीं पारे की उपमा दी है कि पारे को चाहे जितना अलग करो फिर एक हो जाता है। ऐसे कुल मिलाकर के शरीर फिर एक हो जाता है, और जब तक जितनी आयु है उतनी भोग करके ही मरना पड़ता है। बेचारे सोचते हैं किसी तरह मैं मर जाऊं, विष खा लूं, तलवार की धार के नीचे बैठ जाऊं, किसी तरह मुझे कोई काट दे मार दे मैं मर जाऊं। मरते नहीं, और वहां के दुखों को झेलना पड़ता ही है। लोग सोचते हैं कई बार क्या है कि मनुष्य लोग सोचते हैं मेरे ऊपर कर्जा बहुत हो गया है, या मैं अपने जीवन से निराश हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ, चलो जहर खा लूँ, मर जाऊँ, आत्महत्या कर लूँ। तो आत्महत्या यहाँ तो कर ली, और उसके बाद जब नरक में जाएंगे ना, आत्महत्या करने के बाद जीव नरक में जाता है। नरक में कितना ही मरना चाहे तो वहाँ मर नहीं सकते। इसलिए हरे भव्यात्माओं चिंतन करना, कैसी परिस्थिति आ जाए आत्मघात करने की कभी भी कोशिश मत करना। इस जन्म से छूट जाओगे तो अगले जन्म में जाकर के न जाने कितना कष्ट, सागरों तक का कष्ट भोगना पड़ेगा। अरे वैराग्य धारण कर लो, संसार में कोई अपना नहीं है, चाहे कैसी परिस्थिति आ जाए धर्म को मत छोड़ो, धर्म को धारण करो, किसी गुरु के पास चले जाओ, घर छोड़ करके कहीं तीर्थ पे चले जाओ, लेकिन कभी भी कोई महिलाएं, कोई बहुएं, कोई बेटियां, कोई पुरुष मन में आत्महत्या के भाव भी नहीं लाना। ऐसे जा करके नरक गति के दुखों को भोगना पड़ता है। उस नरक में भी अगर कोई श्रीधर देव जैसा, राजा महाबल जैसा कोई हितैषी हुआ तो ही जाके संबोधन करते हैं। तो वहां से एक मंत्री को संबोधन करके उन्होंने निकाला, और भवभवांतर तक फिर उनका संबंध जुड़ा रहा। ऐसे पुण्य कार्य करने वाले, पुण्य का घड़ा भरने वाले भगवान ऋषभ देव के लिए बारंबार नमस्कार करते हुए इस पांचवें भव को यहाँ समापन करते हैं, और कल पुनः हम आएंगे राजा सुविधि की पर्याय में छठे भव में। चलो ऋषभ देव भगवान की